श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम श्लोक नंबर 6, 7, 8 सेकंड पार्ट। हाँ, तो अभी हम वशिष्ठ मुनि के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों में विख्यात व्यक्ति थे। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकश्यपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ था। अब इनके साथ जो है ना विश्वामित्र की और इनकी आपस में लड़ाई थी, ठीक है। विश्वामित्र तथा उनके बीच में बहुत वैर था क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु गाय लेना चाहते थे। जब वशिष्ठ मुनि ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इनके 100 पुत्रों को मार दिया। इनके 100 पुत्र थे और विश्वामित्र ने उन सबको मार डाला, लेकिन क्योंकि वो असली ब्राह्मण थे इसलिए विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे। एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़नों से ऊब कर उन्होंने आत्महत्या करनी चाहिए। बोला अभी मैं क्या करूं क्योंकि वो मुझे सुख से जीने ही नहीं दे रहा था। विश्वामित्र जैसे ऋषि हैं कि वो किसी को जीने ही नहीं देते थे, जान बस जिसके पीछे पड़ जाते थे उनका बहुत ना उनको कष्ट पहुंचाते थे। तो इनको भी बहुत विश्वामित्र ने इनसे वशिष्ठ मुनि से भी वैर किया था, उनको बहुत तंग करते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है मैं मर जाऊं, क्योंकि विश्वामित्र से पहुंच नहीं सकता था कोई भी, उनके साथ वैर ही लेता था और कोई भी उनका साथ भी नहीं लेता था। लेकिन किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। वे पर्वत से कूदे किंतु जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए, वे बच गए। वे सागर में भी कूदे किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर डाल दिया। इस प्रकार इनके आत्महत्या के अनेक प्रयास विफल हो गए। वे सप्त ऋषियों में से एक है और सुप्रसिद्ध ये नक्षत्र अरुंधति के पति हैं। उसके बाद है इंद्र प्रमदः, ये एक अन्य ऋषि विख्यात ऋषि हैं जो कि इंद्रदेव के साथ होते थे। आगे है त्रितः, ये प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से अंतिम पुत्र थे। उनके अन्य भाइयों के नाम एकतः और द्वितः थे। ये सभी भाई एकता द्विता तीर्था यानी बस 1, 2, 3 ऐसे नाम रख दिया था। ये सभी भाई महर्षि थे और धर्म के कट्टर पालक थे। इनके पास इतना समय नहीं होता था कि नाम ढूंढे और फिर नामकरण संस्कार करें, ये सब बुलाए। बस नाम ही पहचानने के लिए रखना ना, ये शरीर है ना, पहचानने के लिए नाम रखना है। कोई भी 1, 2, 3 नाम रख दो, जल्दी से काम करो अपना, चलो भक्ति करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रितम मुनि कुएं में भी गिर गए थे। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर परे भीष्म देव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे। वे वरुण लोक के 7 ऋषियों में से थे। वे पाश्चात्य जगत के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोपीय देश के निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। आगे है धृत समदह ऋषि। उनके विषय में श्री भोपाल जी बता रहे हैं कि ये स्वर्ग के एक ऋषि थे। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के ही तुल्य थे। वे महाराजा युधिष्ठिर के दरबार में जाया करते थे और उस स्थान पर भी गए थे जहां पर भीष्म देव ने अपना शरीर छोड़ा था। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिव जी का गुणगान किया करते थे। वे वीतहव्य के पुत्र थे और इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। एक बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया। इतने सुंदर थे, इंद्र जैसे लगते थे, देवराज इंद्र के जैसे। तो इंद्र के दुश्मन थे, उन्होंने समझा शायद इंद्र है, तो फिर उनको बंदी बना दिया था। वे ऋग्वेद के विद्वान और ब्राह्मणों द्वारा समादरित थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और सभी प्रकार से शक्तिशाली थे। असित नाम का राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अपने समय के शक्तिशाली ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15,00,000 श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। मैं समझ रही थी महाभारत में 1,00,000, 15,00,000 सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में भी सम्मिलित थे। वे महाराज युधिष्ठिर के राज्यभिषेक में अन्य महर्षियों के साथ गए थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिवजी के भी भक्त थे। यहाँ पर बता क्यों रहे हैं कि कितनी महान उनकी महानता बता रहे हैं, कि इतना उनकी इतनी तपस्या थी, उनका इतना ज्ञान था, उन्होंने इतने इतने कार्य किए थे, फिर भी आए हैं यहाँ पर भीष्म पितामह का उपदेश सुनने के लिए। आगे एक कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्र तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। उसके बाद है कौशिक। महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। ये भगवान कृष्ण के से भी मिलते रहते थे। इस नाम के अनेक अन्य ऋषि भी हुए हैं कौशिक। आगे है सुदर्शन। सुदर्शन सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह बड़ा है। और इस चक्र को भगवान ने, यानी विष्णु या कृष्ण ने, अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को सदैव धारण करते रहते हैं। अग्निदेव ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार समर्पित किया जिस प्रकार महाराजा रुक्मणी उन्हें अपनी पुत्री रुक्मणी प्रदान की थी। भगवान भक्तों की ऐसी भेंट स्वीकार करते हैं, यद्यपि ये उनकी स्थायी प्रॉपर्टी होती, संपत्ति होती है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा साल्व का भी वध किया। और एक बार उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। महाभारत विराट पर्व 56.6। उसके बाद सुत गोस्वामी कहते हैं, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यरूपेता आजग्मो कश्यपांगिरसादय। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यरूपेत आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यरूपेत आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः। अन्य च मुनय ब्रह्मन्। यहाँ पर सूत गोस्वामी अपने ऋषियों को बता रहे हैं कि ये तो मैंने सारे आपको नाम बताए ना, उनके अतिरिक्त भी जिन सब के मैंने नाम भी नहीं बता रहा हूँ आपको, इतने सारे ऋषि आए थे। अन्य च मुनय ब्रह्मन् ब्रह्म राता दयोमला। इतने बड़े बड़े जो अमल थे, अमल यानी उनका मन इतना निर्मल था, उनका शरीर भी स्वच्छ था, हृदय भी पवित्र था, फिर भी वो आए थे। क्यों आए थे? वो भगवान के विषय में श्रवण करना चाह रहे थे। शिष्य रूपेत आजग्मु, सारे अपने शिष्यों के साथ आए थे। और कश्यप अंगिरसाद, कश्यप मुनि आए थे, मतलब जो कश्यप देवताओं के जो पिता थे ना आदित्य के पति जो कश्यप मुनि वो आए थे। अंगिरस का मतलब अंगिरा जो देव गुरु बृहस्पति है ना उनके उनके पिता का नाम है अंगिरा ऋषि। तो यानी कि अंगिरस मतलब अंगिरा ऋषि के पुत्र देव गुरु बृहस्पति। अब जो गुरु हैं देवताओं को जो दीक्षा दे रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं देवताओं के जो गुरु हैं वो भी यहाँ पर आए थे। आद्य अंगिर यानी क्या ना कश्यप अंगिरसादय। आदय का मतलब है कि इनमें जो प्रधान हैं उनके तो मैंने नाम बता दिए आद्य ये जो प्रधान प्रधान तो बता रहे हो। बाकी स्वर्ग के जितने दूसरे ऋषि थे वो सब आए थे बहुत सारे आए थे मतलब इतने आए थे कि मैं आपको नाम भी नहीं बता रहा हूँ बता सक रहा हूँ। मतलब जितने जितने बड़े बड़े ऋषियों के नाम आपको समझ में आ रहे हैं जितने जितने बड़े बड़े देवताओं के और कुल गुरुओं के जितने भी नाम आपको समझ में आ रहे हैं वो सब यहाँ पर आए थे। अनुवाद तथा शुकदेव गोस्वामी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अन्ये च मुनयो ब्राह्मण ब्रह्मरातादयो मला। ब्रह्मरात जो है ना वो शुकदेव गोस्वामी को कहा जाता है इसलिए इनका नाम है। तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझाए कि शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मरात ये व्यास देव के प्रसिद्ध पुत्र तथा शिष्य थे जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम महाभारत तथा इसके बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी थी। शुकदेव गोस्वामी ने गंधर्वों यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14,00,000 श्लोक सुनाए थे और सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। इन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह से अध्ययन किया। इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व में 4.11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी उपस्थित हुए थे। श्री व्यास देव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासन करते रहते थे। इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति सिखलाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर आत्म साक्षात्कार करने के साधन चारों आश्रम भगवान का दिव्य पद उनके साक्षात दर्शन करने की विधि ज्ञान प्राप्त कराने वाले सुपात्र पांच तत्व बुद्धि की अद्वितीय स्थिति प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के विलक्षण स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लक्षण शरीर के सिद्धांत प्रकृति के गुणों के लक्षण कल्पत्रु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद की अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। महाभारत की शांति पर्व में 3.3.2 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का वर्णन भी हुआ है। अंत में उन्होंने परमधाम की प्राप्ति हुई। वे अरण्य अरुणिसुत वैयासिकी तथा व्यास आत्मज नामों से सुप्रसिद्ध हैं। ये शुकदेव गोस्वामी का के बारे में श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि उनको इतना ज्ञान था कि उनके पिता जाहिर सी बात है कि वो बादरायण मुनि वेद व्यास जी के पुत्र थे और अपने उन्होंने ये पुत्र प्राप्त ही इसलिए किया था कि वो यह ज्ञान देना चाहते थे। शास्त्रों का ज्ञान जो था वो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा पात्र मिले जिसमें मैं ये शिक्षा दूं और उन्हें भगवान की कृपा से शुकदेव गोस्वामी के रूप में ये उत्पन्न हुए थे और इन्हें भागवत महाभारत सारी जितने भी वेदों के और जो मुख्य मूल बातें हैं वो सारी इनको सिखाई थी वो आई यहाँ पर भीष्म पितामह से श्रवण करने के लिए। आगे है कश्यप, वे मरीचि के पुत्र थे, प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। अब प्रजापति दक्ष की 9 कन्या थी ना, जिसमें से एक शिव जी भी उनके दामाद थे, तो ये भी इन एक कन्या के साथ कश्यप मुनि का भी विवाह हुआ था। वे उस गरुड़ पक्षी के पिता हैं, जिसे बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को खाने के लिए दिया जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया था। वाह, 13 से इनकी शादी हुई थी। इनके नाम थे अदिति, दिति, धनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मोनी, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। मतलब प्रजापति की दक्ष की जो 14 कन्या थी, तो 13 का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ था और एक उनकी पुत्री जो सती थी उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। आगे कहते हैं कि इन पत्नियों से उनके अनेक पुत्र हुए, जो देवता तथा असुर दोनों ही बने, यानी कि दिति अदिति अब दोनों ही थे। तो कुछ दिति से जो पैदा हुए थे वो देवता और अदिति से जो पैदा हुए थे वो असुर। इस तरह इनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार हैं। यह कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय विद्यमान थे। परशुराम ने उन्हें सारा विश्व भेंट किया और बाद में उन्होंने परशुराम को विश्व के बाहर जाने की आज्ञा दे दी। इनका अन्य नाम अरिष्टनेमि था। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते थे। अब परशुराम ने क्या किया था, क्षत्रियो को सबको मार दिया था, तो विश्व इसको दे दिया। फिर परशुराम को बोला, तुमने इतना अपराध किया है तो तुम मेरे विश्व में नहीं रहो। तो ये इतने महान ऋषि थे जिनसे समस्त देवताओं की उत्पत्ति हुई और असुरों की भी उत्पत्ति हुई और भगवान का जो वामन अवतार है वो भी इनसे उत्पन्न हुआ था। आगे है अंगिरा सर, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात हैं। अंगिरा के पुत्र हैं और बृहस्पति इनका नाम है। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनका अंश अवतार है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्न्यास्त्र प्रदान किया था। अब देखो, बृहस्पति किसके गुरु थे, देवताओं के गुरु, और शुक्राचार्य किसके गुरु थे, असुरों के थे। तो इन दोनों में आपस में अक्सर लड़ाई चलती थी। आगे है, उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी के से जो एक विख्यात नक्षत्र है अग्नि के समान 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे, अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया, जिससे वे उसे पृथ्वी पर सूकर बनकर आना पड़ा। याद है आपको मैंने बताया था, ये श्राप इन्होंने दिया था, बृहस्पति ने, गुरु बृहस्पति है, उन्होंने इंद्र को श्राप दिया था कि सारा दिन, क्योंकि आपको खाली अयाची की पड़ी होती है तो इससे बेहतर है, क्योंकि गुरु थे, आप गुरु को कभी ना कभी तो अपने शिष्य पर आ जाता है ना क्रोध, तो कोई ऐसी बात से उनको क्रोध आ गया तो फिर उनके श्राप के कारण वो पृथ्वी पर सूअर बनकर गिर गए थे। वह स्वर्ग जाने से अनिच्छा व्यक्त करने लगे। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि सूकर भी अपने धरा के वैभव के बदले स्वर्ग नहीं जाना चाहता। वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेशक भी थे। श्रील प्रभुपाद जी ने माया के आकर्षण के विषय में बताया कि जब स्वर्ग से इंद्र को च्युत होना पड़ा, वो स्वर्ग के राजा थे लेकिन वो यहाँ पर आकर सुअर बन गए, तो फिर सब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब स्वर्ग का राज सिंहासन खाली है, तो लेने आए थे उसको, लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो उसी तरह से हम जीव इस संसार में जिस स्थिति में है उसी में आनंद भोगने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि यही आनंद, इससे बड़ा कोई आनंद हो ही नहीं सकता, बस ये मुझे मिल जाना चाहिए। आगे भगवत प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति के विषय में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमें वास्तविकता पता नहीं, स्वर्ग को पता नहीं है ना स्वर्ग में कितना आनंद है। उसी तरह से आज के जीव मनुष्य को पता नहीं भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, इसलिए वो क्या चाहते, बस दुख दूर होना चाहिए, संसार में जो टेंशन चल रही है वो खत्म होनी चाहिए। ये नहीं जानता कि मैं ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहाँ पर टेंशन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस प्रसंग से अपने मन पर ये प्रभाव डालना चाहिए कि वास्तव में भगवान के विषय में सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रेयर है, और इसी से कृष्ण प्रेम बढ़ता है। वास्तव में ये सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो अपने अपने आश्रम में बैठकर बहुत बहुत तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, वो सब तो कर ही रहे थे, परंतु आज श्रवण करने के लिए सब अपने अपने आश्रमों को छोड़कर स्वर्ग के सुख को भी त्याग कर आए हैं। ये सुनना चाहते थे कि भीष्म पितामह का क्या अनुभव है, वो क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं धर्म और कृष्ण के विषय में। ये कितना महत्वपूर्ण प्रसंग है जो स्टार्ट होने वाला है, जिसको सुनने के लिए सारे बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े देव ऋषि और सारे बड़े बड़े राज ऋषि इतनी सब इतना डिटेल से श्री प्रभुपाद ने इसे बताया ताकि हमें ये एहसास हो कि हमारे अंदर न बुद्धि है न ज्ञान है, फिर भी हम श्रवण करने के प्रति जरा भी आकर्षित नहीं है। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जिनको सारा ज्ञान है, अब सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास, नारद मुनि, कश्यप मुनि, भरद्वाज मुनि, अंगिरा ऋषि, इन सबको जरूरत क्या थी, उन सबको तो सारी चीजें पता थी, लेकिन पता होते हुए भी जब श्रवण करते हैं ना, फिर क्या होता है, हृदय इतना विमल हो जाता है। वास्तव में ज्ञान का ये फल नहीं कि आपको पता चल जाए, श्रवण का ये फल है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। एक स्टोरी, जैसे कोई कभी कभी कथा में होता है ना, आपको लगता है कि ये स्टोरी तो मुझे पता है, लेकिन वो अगर दूसरे भक्त से सुनते हैं वही वाली स्टोरी, उसी बात को सुनकर हृदय में इतना भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है। वास्तविक श्रवण का लक्षण जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए कि हमें भगवान के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षण होना चाहिए, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग अभी स्टार्ट होने वाला है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।